नमस्ते दर्शक मित्रों, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से बहुत ज्यादा जल्दबाजी होती है या सुस्त होते हैं, तो दोनों भी हमारे लिए किस तरह से नुकसानकारक हो सकता है, तो हमें बैलेंस बनाकर रखना है। तो ये बैलेंस किस तरह से बनाना है, इसमें परखने की शक्ति की कैसी आवश्यकता होती है और राजयोग से ये शक्ति कैसे बढ़ती है, आज इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हर बार की तरह डॉक्टर सचिन मेरे साथ स्टूडियो में है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति, नमस्ते।
ओम शांति।
वही बात हम पीछे से फिर से आगे उसमें चर्चा करना चाहते हैं कि परखने की शक्ति अपने कहाँ बढ़ती है, क्योंकि धैर्यता कम होती है अगर बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी तो, सहन शक्ति की कमी होती है और उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये परखना बहुत जरूरी है कि मुझे बैलेंस कहाँ कैसे रखना है, तो ये शक्ति कैसे बढ़ सकती है हमारे अंदर।
परखने की शक्ति ये बुद्धि का काम है। परखना और निर्णय करना, ये दोनों शक्तियां साथ में जाती हैं। किसी भी बात को हम पहले परखते और फिर निर्णय करते, पर ये इतना फ्लैश ऑफ सेकंड में होता है कि जैसे हमने एंट देखा पिछले एपिसोड में, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट, वैसे हमारा परखना भी ऑटोमेटिक हो जाता है। क्या होता है कि अगर हमारा परखना सही नहीं है तो जहां पर हमको सहन करना चाहिए वहां हम सामना करना चालू कर देते हैं, क्योंकि परखा मैंने गलत, तो मुझे परखना भी यथार्थ आना चाहिए। और इसके लिए बुद्धि एकदम क्लियर चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। अगर बुद्धि में बहुत व्यर्थ है, बहुत संकल्प चल रहे, बहुत विचार चल रहे या प्रेशर है, तो मेरे को विजन मेरा क्लियर नहीं रहेगा। जैसे किसी कोहरा में या किसी धूल आ जाती है चश्मे के ऊपर तो आप स्पष्ट देख नहीं पाते हैं, ऐसे ही हमारे मन के अंदर या आत्मा के अंदर जो हमारे आदतें होती है, जो विकार होता है, उसकी वजह से बादल आ जाते हैं, तो मैं देख नहीं पाता हूँ। जब मैं अच्छी तरह से देख नहीं पाता हूँ तो मेरा निर्णय गलत हो सकता है। तो होता क्या है कि कई जगह पर मेरे को सहन करना आवश्यक होता है, पर वहां अगर मैं सामना करना चालू करूं तो रादर देन सॉल्विंग द सिचुएशन आई एम क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स, माना परिस्थिति को सुलझाने के बजाय मैं उसको उलझाने लगता हूं। और जहां पर मुझे सामना करना चाहिए और वहां मैं सहन करूं तो भी ठीक नहीं है। इसलिए परखने की शक्ति बहुत अच्छी तरह से हमको डेवलप करनी है, और इसके लिए जितना योग की जरूरत है, जितना क्लैरिटी चाहिए अंदर से, महावाक्य जो परमात्मा के है वो हमको क्लैरिटी देते हैं। देखो, क्लैरिटी दो प्रकार से आती है, एक है ज्ञान के आधार पर क्लैरिटी आती है, एक होता है योग और हमारी समझ के आधार पर, अनुभव के आधार पर भी स्पष्टता आने लगती है कि मुझे कौन से परिस्थिति में क्या करना है। जैसे साइंस में हम क्या करते हैं, ट्रायल और एरर से चलते हैं कि प्लान ए फेल्स, प्लान बी इज देयर, देन प्लान सी इज देयर। तो ट्रायल करते करते हम सीखते हैं कि ये चीज काम करती है या नहीं करती है, पर जिंदगी में ट्रायल और एरर करने के इतने मौके शायद नहीं मिल सकते। कई बार ट्रायल एरर ज्यादा करना भी अच्छा नहीं होता है। बड़े निर्णय लेने हैं जिंदगी के तो वहां पे ट्रायल एरर नहीं चलता है। जैसे शादी एक बार होती है, वहां ट्रायल एरर नहीं चलता है। जिंदगी का बड़ा डिसीजन आप एक बार लेते हैं, तो वहां पे अनुभव काम में आता है, या बड़ों का अनुभव हम सुन सकते हैं, परख सकते हैं। तो ये हमको परखने की शक्ति हर समय काम में आती है। इसलिए हमको ज्ञान और योग के आधार पर इसको डेवलप करना चाहिए, एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, माना ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, नो। क्योंकि ऐसे कहते हैं कि जितना आप सूक्ष्म होते जाते हैं, परमात्मा के महावाक्य मुझे याद आते हैं, उतना माया भी सूक्ष्म होते जाती है।
अच्छा।
हाँ, तो उस सूक्ष्म को पहचानने के लिए सूक्ष्म बुद्धि ही चाहिए, और वो सूक्ष्म बुद्धि या दिव्य बुद्धि एक दो दिन में, महीने में नहीं होती, उसको तो टाइम लगता है। पर डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप नियमित रूप से ज्ञान योग का अभ्यास कर रहे हैं, राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, परमात्मा के महावाक्य आप नियमित सुन रहे हैं, तो हमारा यह अनुभव है कि धीरे धीरे हमारे अंदर वो पावर्स जो परखने की शक्ति का आपने कहा वो आने लगती है। और केवल परखने की नहीं, उसके साथ बहुत सारी शक्तियां हैं, पर जिसको हमने अष्ट शक्ति कहा, और ये आठों की आठों शक्तियां हमारा ऐसा अनुभव है कि फ्लैश ऑफ सेकंड में काम करती हैं।
अच्छा,
फ्लैश ऑफ सेकंड में
कौन कौन सी शक्ति?
इसमें मुख्य जो है परखने की, निर्णय करने की शक्ति। तो परखने के बाद मैं निर्णय करता हूं कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या मेरे को इस परिस्थिति में सहन करना है, सामना करना है या सहयोग देना है।
जी।
ये तीन शक्तियां इमीडिएटली साथ सामने आती है कि सामना करना है, सहन करना है या सहयोग देना है। इसके अलावा फिर दूसरी तीन शक्तियां है कि इस समय मुझे विस्तार में जाना चाहिए या सार में रहना चाहिए।
बहुत अच्छा।
हाँ, और मुझे ये भी निर्णय करना पड़ता है कि मुझे समेट के रहना चाहिए या विस्तार करके रहना चाहिए। समेटना माना पैकअप करके रेडी रहना, जब बुलावा आया, जैसे आर्मी वालों को रहता है ना, उनको बुलावा आता है तुरंत रेडी, फायर ब्रिगेड वाले रेडी रहते हैं, एवर रेडी। तो ये समेटने की शक्ति आती है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति आती है, ये शक्तियां भी इसके साथ में तुरंत आने लगती है। और जो अच्छा योगी होता है वो ये आठों की आठों शक्तियों को फ्लैश ऑफ सेकंड में यूज करता है।
जी।
और अच्छे योगी के सामने जब आप मिलेंगे ना, कोई भी डिफिकल्ट परिस्थिति उसके सामने आए, उसको टाइम नहीं लगेगा, वो सेकंड में ऐसे लगेगा कि वो डिसीजन लेगा, जो मेरे लिए कठिन है पर अच्छे योगी के लिए बहुत ईजी है।
अच्छा, मतलब ये शक्ति अगर डेवलप होती है तो हमारे लिए बहुत फ्लैश ऑफ सेकंड में हम इन शक्तियों को यूज
करना सीख लेते
हैं। उसका सिम्टम्स हम कहेंगे उसको। कई लोग हैं, हम इंक्लूडिंग मी, बहुत सारे ये समझते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ वो राइट है।
आध्यात्मिकता में, इवन लौकिक में भी बताया जाता है कि ईगो इज वेरी सटल, माना जो अभिमान होता है बहुत सूक्ष्म चीज है। जैसे मेरे अंदर अभिमान है तो मुझे नहीं पता चलेगा, पर आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति के अंदर अभिमान है। तो उसका पैरामीटर है, उसका एक सिम्टम है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमसे गलती हो रही है। जिस व्यक्ति के अंदर ईगो होता है वो हमेशा अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे मुझे परमात्मा के और महावाक्य याद आते हैं जो हमको शिव बाबा ने सुनाए थे कि बच्चे सत्यता के साथ सभ्यता होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि अगर आप सत्य है तो अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं कि इफ यू आर राइट नो नीड टू गेट एंग्री, इफ यू आर राइट नो नीड टू गेट एंग्री, एंड इफ यू आर रॉन्ग यू डोंट हैव एनी राइट टू गेट एंग्री।
वेरी नाइस।
तो दोनों सिचुएशन में आपको शांति रहना है। जो लोग कहते हैं कि मैं सत्य हूँ लेकिन लोग मुझे नहीं समझते हैं, या मैं राइट हूँ मैं सिद्ध करके बताऊंगा, तो समझो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है। कई लोग परमात्मा के महावाक्य जो मुझे याद आते हैं, शिव बाबा ने कहा था कि अगर कोई हीरा है वो मिट्टी में भी पड़ा है तो भी वो अपनी चमक जरूर दिखाएगा, लेकिन अगर कोई हीरा नहीं है फिर भी अपने को हीरा समझता है तो दैट इज एन ईगो। तो मैं ही राइट हूं, ये एक सूक्ष्म अभिमान हो सकता है। और सत्य बात यह है कि अगर आप सच है तो आप सिद्ध करने मत जाओ, क्योंकि जितना आप अपने को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं तो समझने का कुछ गड़बड़ है। अनलेस आस्क, जब तक आपको पूछा नहीं जाए तो आप अपने को स्पष्टीकरण मत दो। क्योंकि होता क्या है, जो व्यक्ति गलत होता है ना वो अपने को सिद्ध करने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि वो गलत है। सत्य व्यक्ति कभी भी सिद्ध करने में अपनी एनर्जी नहीं लगाएगा क्योंकि उसको पता है कि वो सत्य है, सो ही विल बी रिलैक्स। तो अगर आप सही है जैसे आपने कहा तो उसके दो पैरामीटर है, एक आपके अंदर कोई डाउट नहीं होगा, कोई खेवास नहीं होगा, और आप खुश रहेंगे। अगर इसके बावजूद भी कुछ है तो समझने का आप 100% सर, कुछ तो मिलावट है।
ओके, मतलब अंदर से हमको
यस
डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा इफ आई एम राइट।
अगर आप राइट है तो आप शांत रहेंगे।
ओके,
अदरवाइज यू विल बी डिस्टर्ब। यही एक बहुत सूक्ष्म चीज है जिसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल जाता है बहुत लोगों के लिए। सूर्य है, सूर्य को कभी बताना नहीं पड़ता कि वो सूर्य है। बादल भी आ जाएंगे, उसका टेम्पररीली पावर, जैसे बादल हट गए उसका प्रकाश है ही है।
थोड़ी देर के लिए ये सब चीजें होती हैं, पर वो ईगो को हम कैसे मतलब पहचाने, क्योंकि ऑल द टाइम मैं, ये मेरे साथ जैसे वो चिपका है पूरी तरह से, तो मैं कैसे समझूं, क्योंकि एक हम शुद्ध अहंकार भी कहते हैं, हमारा सेल्फ एस्टीम भी कहते हैं, कई बार ये मिक्सअप हो जाता है। ये
यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आध्यात्मिकता में ये आखिरी पेपर है, शुरुआत का फर्स्ट चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर यही है। भगवत गीता में ऐसे कहते हैं कि पहला चैप्टर विधि है, और 18वां अध्याय सिद्धि है। पहला चैप्टर की मैं कौन और 18वां अध्याय नष्ट मोहा, मेरे सब संदेह नष्ट हो चुके हैं और जो आप कहेंगे परमात्मा में करने को तैयार हो। तो ये पहला चैप्टर जो मैं का है, ये हुए मैं, इसमें ही पूरा जिंदगी चला जाता है। और जो आपने सवाल पूछा है बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि जितने भी इस समय समस्याएं हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, फिर वो रिलेशनशिप्स के हो, उसका एक ही कारण है, वो है अहम भाव जिसको कहते हैं। तो मुझे अभी यहाँ पर भी शिव बाबा के महावाक्य याद आ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि अहम और वहम को छोड़कर रहम भाव को धारण करो। अभी अहम को छोड़ने का एक ही तरीका, वो माना रहम भाव। जब तक रहम भाव नहीं आएगा तब तक अहम नहीं जा सकता, और अगर रहम भाव नहीं है तो समझने का अहम है। इट्स लाइक अंधेरा है मतलब प्रकाश नहीं है, और ईगो या अहंकार एक अंधेरा है। जैसे अंधेरे में कोई व्यक्ति ठीक तरह से देख नहीं पाता है, उसको चोट लगती, गिर जाता है, दुखी होता है, वैसे अहम वाला व्यक्ति भले बाहर से दिखाएगा कि वो खुश है पर अंदर से वो दुखी रहता है। और उसका सेल्फ चेकिंग का पॉइंट अगर आप पूछ रहे हैं तो हम अंग्रेजी में एक वाक्य कहते हैं, इफ इट हर्ट्स इट्स ईगो।
ओके,
इफ इट हर्ट्स इट्स ईगो, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट वाले को कभी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मैंने सेल्फ रेस्पेक्ट वाले का अपमान किया तो वो कभी हर्ट फील नहीं करेगा, उसको रहम भाव आएगा। मैं उसके लिए एग्जांपल देता हूँ जो हमको ने दादियों से सुना। हमारी दादी गुलजार है जो बहुत बड़ी योगी है, साकार माध्यम है परमात्मा के लिए, बहुत सालों से तपस्या कर रही है एंड जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है ब्रह्मा कुमारी के। तो उनके साथ का अनुभव सुना कि उनके साथ एक ब्रह्मा कुमारी बहन थी और एक बहन जो डिस्टर्ब थी वो उनसे आके कुछ कह के गई, पर उनका कहने का जो तरीका था वो बिल्कुल गुस्से में थे और बहुत सारे शब्द उन्होंने दादी जो कि चीफ है उनके लिए, इस तरह से कोई बात नहीं करते, पर उस बहन ने इतना कुछ कहा और दादी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। पर दादी के साथ जो उनकी ब्राह्मणी थी जो दादी को संभालने वाली है उससे सहन नहीं हो रहा था। वो चले जाने के बाद दादी को उसने पूछा कि दादी तुम चुप कैसे रही, देखा उसने क्या क्या कहा तुमको। तो दादी ने एक ही शब्द कहा, हाँ डिस्टर्ब लग रही थी बेचारी,
रहम के बाहर।
हाँ, दादी को बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, उल्टा दादी के अंदर से क्या आया, बिचारी डिस्टर्ब लग रही थी। ये गुलजार दादी का प्रैक्टिकल ईगोलेस स्टेज की अवस्था है। नहीं तो आप कल्पना करो, उसी जगह पे दूसरा कोई चीफ है और उसका सबऑर्डिनेट आता है उसके हाथ के नीचे काम करने वाला, आके दूसरों के सामने उसका इंसल्ट करके जाता है। अगर ईगो वाला व्यक्ति है
बहुत ज्यादा तकलीफ होती है,
वो तो फायर करेगा, उसका कंप्लेंट करेगा, क्या क्या करेगा। पर वहां पे दादी का भाव क्या था, डिस्टर्ब लग रही थी बेचारे,
डिमोटिवेट भी कर देते हैं। हाँ। कितने बार
अहम रहेगा ना जिस व्यक्ति के अंदर, वो हमेशा सोचेगा जरूर इसने जानबूझ के ऐसा कहा। हाँ। वो वहम भाव तुरंत आ जाता है,
विश्वास नहीं रहता। हाँ, बार
और वो बार बार वो सोचता रहेगा इसने जरूर ऐसा किया होगा, ये जानबूझ के मुझे परेशान करता है। देखो अभी दो लोग भी बात कर रहे हैं ना आपस में, जो अहम भाव वाला व्यक्ति क्या होगा, बोलेगा देखो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, मुझे पता है। माना जो चीज नहीं है उसका भी वो निर्माण करेगा।
बराबर।
इसलिए ये जो तीन शब्द है अहम वहम और रहम, इनका बहुत सटल कनेक्शन है। और आध्यात्मिकता की आखिरी सीढ़ी जो पार करना है वो है अहंकार को जीतना। माना जीतना माना वो भी बहुत बड़ा सटल ट्रैप हो सकता है। और ट्रैप कैसे है उसमें कि अगर कोई कहता है मैंने अहम को जीत लिया, आप उधर ही हार चुके हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा गुरु था, उसका परिचय दे रहे थे कि लोग इसने इतने साधना किया, इतने शास्त्र पढ़े हैं, तो वो गुरु ने फिर पल से कहा लास्ट में कि मेरी नम्रता के बारे में भी लोगों को सुना हो तो
मतलब वो थॉट भी नहीं आना चाहिए। हाँ,
तो आप समझ रहे हैं बहुत सूक्ष्म चीज है अहम को जीतना, ये लास्ट पौड़ी है। कई लोग इसके बड़े बड़े रूप को तो जीत लेते हैं पर सूक्ष्म रूप को जीतने में पूरा जिंदगी जा सकता है। और इसका जीता है, इसका एक ही प्रूफ है कि आप अपने आप को सिद्ध नहीं करोगे, आप अपना स्पष्टीकरण नहीं दोगे, क्योंकि आप सूर्य के समान हीरे के समान हो। और दूसरा, आपके अंदर से हमेशा रहम भाव रहेगा, और रहम दूसरों के ऊपर बाद में आता है, पहले खुद के ऊपर आता है कि देखो मैं कैसी आत्मा थी, मैं पहले जन्म में संपूर्ण पवित्र थी, मेरे अंदर इतने दिव्य गुण थे, अभी मेरी क्या हालत हो गई, कितना अहंकार है जिसकी वजह से मैं स्वयं भी दुखी हूँ, दूसरों को भी मैं दुखी करता हूं, ये अपने ऊपर पहला रहम आएगा। और जब अपने ऊपर रहम आता है तब हम अपने आप को एक्सेप्ट करके बदलने का सोचते हैं, और तभी हम दूसरों के सामने रोल मॉडल बन सकते हैं। और ये एक व्यक्ति का नहीं, जितने भी संत होके गए उनकी ये अवस्था रह चुकी है। मुझे यहाँ पे कबीर का दोहा याद आता है कि बुरा देखन मैं चला, हमने कितनी बार इसको सुना होगा, बुरा न मिलिया कोई, जिन खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। मैंने कबीर जैसा योगी व्यक्ति ये कहता है कि मैं बुरा देखने को गया, मुझे कोई मिला नहीं, लेकिन जब अपने आप को देखा तो पता चला रे मेरे अंदर ही इतना है, मैं दूसरों को कहां दोष दूं। तो जो व्यक्ति खुद के अंदर के अवगुणों को देखे, उसको स्वीकार करके उसको परिवर्तन करता है, खुद के ऊपर रहम उसको आता है, तभी उसके अंदर वो भाव जागृत होगा, क्योंकि खुद को क्षमा करने वाला ही दूसरे को क्षमा कर सकता है।
बहुत सुंदर बात बताई आपने, ये बहुत ऊंची बातें हैं, बहुत मैं समझती हूँ यहाँ बैठकर आज मुझे लगा है कि बहुत ऊंची मंजिल है जो आपने कहा, ईगोलिस्टिक 100% उसको जीतना, ऐसे दुनिया में शायद बहुत कम लोग होंगे। क्या ये एक नॉर्मल गृहस्थी के लिए ये संभव है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, मुझे अभी अभी बात करते समय याद आया, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो अभी अभी राजयोग का उस समय उन्होंने भी प्रैक्टिस शुरू किया, मुझे कह रही थी कि हम ज्यादा टेंस में है कि हमको बदलना है, हमको बदलना है, यू नो, पूरे टाइम हम अपने आप को देखते रहते हैं कि मेरे में ये कमी है, ये कमी है, और कहीं ना कहीं हमारा नेचुरल थोड़ा सा जो लाइफस्टाइल चल रहा था वो हमारा चेंज हो चुका है। और कई लोग ऐसे हैं जिनको ये सब चीजों से कोई लेना देना नहीं और मस्ती से लाइफ जी रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे, क्योंकि ये ऊंची मंजिल है।
यस, मंजिल ऊंची है, हम ये मानते हैं। यहाँ पे मुझे फिर से शिव बाबा के महावाक्य याद आते हैं, जो आपने कहा ना टेंशन आता है, परमात्मा ने हमको यही कहा कि टेंशन के आगे आप ए लगा दो,
अटेंशन।
अभी होता क्या है, अटेंशन रखना अच्छी बात है, लेकिन कई लोगों को अटेंशन का भी टेंशन आ जाता है कि मेरे को अटेंशन रखना है, मेरे से कोई गलती ना हो, मेरा चार्ट अच्छा रहे, मेरे सारा सबको सुख मिले। तो हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी नई चीज हम सीखने जाते हैं, जैसे कि आप साइकिल चलाना सीखते हो तो शुरुआत में आप गिरेंगे, आप तैरना सीखना चाहते हो तो दो चार बार नाक में पानी जाएगा, बट दैट डजंट मीन कि आप बुरे व्यक्ति है। यहाँ पे राजयोग में सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगती है कि परमात्मा शिव बाबा ने हमको कहा कि बच्चे तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान हमको स्वीकार कर रहा है, तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, पर तुम पहले जन्म में संपूर्ण पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे, तुम देवता थे। मेरे पास ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, हमारे एक भाई का मुझे याद आता है, 22 साल से वो शराब पीता था, सिगरेट पीता था, सब नशे करता था, यहाँ तक कि उसने कहा गटर में पड़ा रहता था, अपने बीवी को वो मारता था, बच्चों के लिए पेंसिल वगैरह कुछ नहीं देता था, ऐसी उसकी हालत थी। और जैसे ही उसको मेडिटेशन का कोर्स कराया तो आश्चर्य की बात कि उसका 22 साल का नशा उसने 7 दिन के राजयोग के अभ्यास से छोड़ दिया और कोई तकलीफ नहीं उसको।
बहुत बड़ी बात है।
तो हमको आश्चर्य लगा कि हमने सुना था इतना पुराना नशा होता है तो तकलीफ होने के चांस, लेकिन इसको कुछ नहीं, ये बिल्कुल खुश।